उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई जानकारी और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसकी बात भी हम करेंगे। तो आइए चलते हैं आधे घंटे के लिए देश के पूर्वोत्तर के हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों की ओर, जहां आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को शब्दों के माध्यम से महसूस करेंगे। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, सद्भाव जहां की शक्ति है, ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं, ऐसा पूर्वोत्तर जो अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा हो। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। सबसे पहले चलते हैं नागालैंड।
सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन।
21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नागालैंड में भी विभिन्न संस्थानों के छात्रों ने कोहिमा में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मिलजुल कर योग का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नागालैंड में विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों और असम राइफल्स द्वारा अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोहिमा में युवा संसाधन और खेल विभाग ने राष्ट्रीय आयुष मिशन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय के सहयोग से आईजी स्टेडियम में योग सत्र का आयोजन किया। हमारी संवाददाता आसानू ने हमें बताया कि कोहिमा की एक छात्रा मेत्सुनु एलटीयू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपना अनुभव उनके साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि वह पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और उन्हें योग के कई अच्छे लाभ भी मिले। उधर त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने अगरतला में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में योग कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य में अन्य कई स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बच्चों ने योग का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके अलावा सालबागान में बीएसएफ मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महानिरीक्षक पटेल पीयूष पुरुषोत्तम दास के नेतृत्व में बीएसएफ कर्मियों ने योगाभ्यास किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने हापनिया अंतर्राष्ट्रीय मेला ग्राउंड में योगासन में भाग लिया और योगासन किए। इस कार्यक्रम में राज्य के युवा मामले और खेल मंत्री टिंकू रॉय, राज्य के मुख्य सचिव जेके सिन्हा और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तवांग के ग्यालवा सांगयांग ग्यात्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन तवांग जिला प्रशासन ने भारतीय सेना के सहयोग से किया था। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों, छात्रों, भिक्षुकों और आम जनता ने भाग लिया।
सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन।
सिक्किम में भी योग दिवस जोर शोर के साथ मनाया गया। राजधानी गैंगटॉक के परजोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य ने शरीर और मस्तिष्क की स्थिरता में योग के महत्व पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे योग शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बढ़ाकर समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है। उन्होंने लोगों से संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यपाल आचार्य कार्यक्रम के दौरान आयोजित योग सत्र में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में योग सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल आचार्य ने छात्रों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। इस कार्यक्रम में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जिस प्रकार से योग को एक समग्र अभ्यास के रूप में बढ़ती वैश्विक मान्यता मिल रही है, उसके प्रति समर्थन दिखाई दिया।
सूर्य तुझे नमस्ते धरती तुझे नमन।
उधर मणिपुर में इम्फाल स्थित राजभवन में योग दिवस मनाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योग किया। राज्य के विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। असम से भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाने के समाचार मिले।
सूर्य तुझे नमस्ते धरती तुझे नमन।
अब चलते हैं सिक्किम। हमारे संवाददाता दिली राम दुलाल ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
इस दौरान सर्वप्रथम सिक्किम की राज्यपाल ने नागालैंड का राज्यपाल ला गणेशन को स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए भारत देश की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि पर आधारित कार्यक्रम भारत को जानो पर विस्तार से अपने विचार रखते हुए हर्ष व्यक्त किया
एवं संस्कृति विभाग सिक्किम सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत को जानो के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम।
पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति का बखान करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों हमें जोड़ने का कार्य करती है। कार्यक्रम को अद्भुत बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधताओं का देश है। जानने के लिए भारत की विविधता में एकता की संस्कृति को जानना अति आवश्यक है। यही विविधता हमारी पहचान है और हम भारतवासियों को एकता के सूत्रों में पिरोती है।
पूरी दुनिया को एकता का संदेश देने का काम किया भगवान बुद्ध ने किया।
नागालैंड के राज्यपाल ने कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम को भारत की विविध सांस्कृतिक का समागम बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम देश की विविध संस्कृति को दर्शाते हैं। यह हमारे मूल्य पहचान को चिन्हित करते हैं एवं अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति, भाईचारे एवं विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देती है। कार्यक्रम का आरंभ में दोनों राज्य के राज्यपालों को अभिनंदित किया गया था। पारंपरिक दीप प्रज्वलन के बाद निर्देशक उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र श्री प्रसन्ना गोगाई द्वारा कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए स्वागत संबोधन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न लोक सांस्कृतिक एवं नृत्य की झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें तमिलनाडु का करगट्टम, सिक्किम का सरोठी और निमा सरजंग, अरपु युद्ध नृत्य नागालैंड, बांग्ला, मेघालय, जिंदुआ पंजाब एवं बिहू नृत्य असम के रहे हैं। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिली राम दुलाल।
बात मेघालय की। मेघालय में इंडिया रीड्स मूवमेंट एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों में पढ़ने से होने वाली खुशी को बढ़ावा देकर आजीवन उन्हें पढ़ने की आदत के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में इस पहल का उद्घाटन शंकरदेव कॉलेज द्वारा किया गया। अन्य भाषा बोलने वालों को अंग्रेजी पढ़ाने वाले TESOL विभाग द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मेघालय चैप्टर और समग्र शिक्षा अभियान SEMAM ये कार्यक्रम मेघालय सरकार की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रक्कम संगमा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इंडिया रीड्स मूवमेंट छात्रों को पारंपरिक पुस्तक पढ़ने और ई रीडिंग के लाभ बताते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। इसका मुख्य लक्ष्य स्कूल में नियमित कक्षा अनुसूची में पढ़ने के सत्र शामिल करने और छात्रों के नेतृत्व में और शिक्षकों द्वारा निर्देशित रीडिंग क्लब गतिविधियों को शुरू करने के लिए उन्हें समझाना और जागरूक करना है।
For this decoration, the launching of India Reach Movement Meghalaya Chapter. And my best wishes to each one of you and each one of us. As the Vivians, as you already heard from the earlier speaker, it surely will be a blessing and making us.
ये किस प्रकार का आंदोलन है जिसमें पढ़ने वाली प्रतिभाओं को पहचानने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करने और पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पुस्तक दिवस और ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। वरिष्ठ सलाहकार और ELTAI के पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर के एलंगर ने पाठ्य पुस्तक अध्ययन से गहन और व्यापक रूप से उन्हें पढ़ने की आवश्यकता और विभिन्न शैलियों और ग्रंथों को उसमें शामिल करने और साहित्य के वैश्वीकरण के महत्व पर भी बल दिया।
इंडिया रीड्स, व्हाई इंडिया रीड्स? बिकॉज़ इंडिया डज़ नॉट रीड। We are focusing only on professionalizing teachers. But now we feel that students' needs are much more intense and we need to address it. As teachers, if we don't address this problem, who else is going to do it? Doctors won't do it, engineers won't do it, nobody else can do it, even parents will not do it. It's only the teachers can do it. If the learners are not doing it, we need to accept the responsibility that primarily we are responsible.
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवा छात्रों से मिलना और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि छात्रों को इससे किसी भी अवसर पर बोलने और लिखने की मदद मिले। इस बीच रकम संगमा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जब हम पढ़ी जाने वाली किताबों के माध्यम से खुद को वैश्विक बनाने की बात करते हैं तो हमें जनजातियों की वास्तविक पहचान और उनकी जीवन शैली के बारे में भी जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि इसके बारे में अभी भी बहुत सी गलत धारणाएं यदा कदा सामने आ ही जाती हैं। हमने अपने बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है इसलिए देश के बारे में अपने अस्तित्व के बारे में जागरूकता की कमी है। हमें दूसरों से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारी संस्कृति को बढ़ावा देंगे। हमें इसके बारे में लिखना पढ़ना चाहिए ताकि लोग भी उसे पढ़ें और जानें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति के रूप में हम अपने बौद्धिक योगदान को दे सकते हैं। कार्यक्रम में मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर टी के वामन की पुस्तक ऑन कम्युनिकेटिंग का विमोचन भी किया गया और उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी पुस्तक से न केवल छात्रों को बल्कि एक अच्छा विचारक बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को लाभ होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र के शोधकर्ताओं के एक दल ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के मंडला क्षेत्र से वनस्पति की एक नई प्रजाति को खोज निकाला है। इसका नाम पेट्रोकॉस्मिया रखा गया है। गेस्नेरियासी परिवार से संबंधित पेट्रोकॉस्मिया अरुणाचल में पाई जाने वाली इस तरह की दूसरी ज्ञात प्रजाति होने के कारण बहुत उल्लेखनीय है। ये महत्वपूर्ण खोज वनस्पति विविधता को तो बढ़ाती ही है साथ ही अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध वनस्पतियों को भी रेखांकित करती है। नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी के नवीनतम अंक में प्रकाशित किए गए हैं। इस खोज का नेतृत्व डॉक्टर कृष्णा चोलू ने ईटानगर के शोधकर्ता अक्षत शिनॉय और अजित रे के साथ मिलकर किया गया है। उनका काम इस क्षेत्र की अनूठी वनस्पतिक जैव विविधता का पता लगाना और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए चल रहे उनके भरपूर प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। और अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के नोनी जिले के जैविक हल्दी उत्पाद पर हम जानकारी हासिल करेंगे।
नोने डिस्ट्रिक्ट इज द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर विच प्रोड्यूस मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ड्यू टू इट्स फेवरेबल वेदर कंडीशंस। द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ नोने डिस्ट्रिक्ट इज सुइटेबल फॉर टर्मेरिक प्लांट एंड टर्मेरिक फार्मिंग हैज बीन डन इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स।
मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र लोगों का मुख्य व्यवसाय है और ये राज्य के घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान देते हैं और कई लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। अब आपको बताते हैं कि मणिपुर का तामेंगलोंग मंदारिन संतरा अपने अम्लीय स्वाद और कह सकते हैं कि अनूठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और ये मणिपुर के तामेंगलोंग और नोनी जिले में पाया जाता है। अब नोनी जिले के किसानों ने जैविक हल्दी का उत्पादन भी शुरू कर दिया है और एक किसान उत्पादक कंपनी इस मिशन पर किसानों का नेतृत्व कर रही है। हमारे इम्फाल संवाददाता जेजे थोकचम ने बताया,
द कंपनी हैज बीन वर्किंग ऑन टर्मेरिक कल्टीवेशन विद मोर देन 400 फार्मर्स नाउ। दे आर वर्किंग कलेक्टिवली विद द मिशन टू एम्पावर फार्मर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट By promoting local products।
नोनी जिला मणिपुर का एक पहाड़ी जिला है जो अपनी अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण कई फलों और सब्जियों का उत्पादन करता रहा है। नोनी जिले की जलवायु हल्दी के लिए बेहद उपयुक्त है और पिछले कई वर्षों से जिले में हल्दी की व्यापक खेती की जा रही है। हालांकि नोनी जिले के आवांगकुल में स्थित ताओसुम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के तहत जिले में बड़े पैमाने पर हल्दी की खेती को अपनाया गया है। कंपनी को 2022 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत किया गया था और अब 400 से अधिक किसानों के साथ ये कंपनी हल्दी की खेती पर काम कर रही है। वे किसानों को सशक्त बनाने के लिए और साथ ही साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर सतत ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के मिशन यानी कि अभियान के रूप में सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। कंपनी हल्दी की ताजी परत और पाउडर का उत्पादन करने के लिए एक प्रसंस्कृत इकाई, कस्टम हायरिंग सेंटर और अन्य मशीनरी भी यहां लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए ताओसुम फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ श्री किशम मंगम ने कहा,
द कंपनी हैविंग 477 रजिस्टर्ड फार्मर्स फ्रॉम 7 डिफरेंट क्लासेस ऑफ विलेजेस नेमली रुंगरंग 1, रुंगरंग 2, Longchum 1, Longchum 2, Kongsang, M. Kunau and Kambiron villages. The company has got 23 farmers interest groups, also known as FIZ, who does the group farming and also individual farm supporting and supplying farm products for the company to process. The company also deals with value-added items like king chili pickles, bamboo shoot pickle, mangoes pickle, seasonally oranges and bananas, locally grown edible fruits are also available and deal with.
नोनी जिले में उगाए जाने वाले राज्य के GI टैग फल तामेंगलोंग मंदारिन संतरे के बाद अब नोनी जिले की जैविक हल्दी राज्य भर में लोकप्रिय हो गई है।
After the Tamenglong Mandarin Orange, a GI tag fruits of Manipur, also grown in Noni, the organic turmeric of Noni has become popular in the state. JJ Thoksom, Akashvani News, Imphal.
और अब बात असम की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बाल विवाह जैसी समस्याओं को रोकने के लिए अगले 5 वर्ष में कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर तक की सभी लड़कियों को मासिक वजीफा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि निजित मोइना नाम की इस योजना को असम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। असम में लगभग 10 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 5 वर्ष में करीब 1,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि विवाहित लड़की को इसका लाभ नहीं मिलेगा। एकमात्र अपवाद वे विवाहित लड़कियां होंगी जो PG पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लड़कियों का विवाह तब करने को प्रोत्साहित करना है जब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं और साथ ही वो अपने और अपने परिवार के लिए कमाई शुरू कर सकें। हमारी गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को हर महीने 1,000 रूपए दिए जाएंगे। डिग्री वाली छात्राओं के लिए ये राशि 1,250 रूपए होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों के लिए 2,500 रूपए की राशि दी जाएगी। और बीते 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। ये एक वार्षिक उत्सव है जो नागालैंड में संगीत की शक्ति और इसकी सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देता है। समूची दुनिया में ये मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस पर दुनिया भर के संगीतकार और संगीत प्रेमी संगीत की विभिन्न शैलियों का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। नागालैंड में राज्य भर के संगीतकार इस दिन को मनाने के लिए कई कार्यक्रम और संगीत कार्यक्रमों का उन्होंने आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संगीत प्रेमियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। तो यहीं रुककर एक गीत हम सुनते हैं। हर राज्य की कहे या हर प्रदेश या किसी जगह विशेष की पहचान अवश्य होती है और ये उसे अन्य जगह से अलग बनाती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियाँ और 100 से अधिक उप जनजातियाँ हैं। प्रत्येक की अपनी इकाई, बोलियाँ और सांस्कृतिक पहचान है। आदि राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है। आज हमारे पास आपके लिए अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति के आबांग या पुजारी गीत पर रिपोर्ट सुनवाते हैं।
जब हम विशिष्ट पहचान कहते हैं तो इसका मतलब है कि इनमें से प्रत्येक जनजाति की संस्कृति और बोलियां एक दूसरे से भिन्न हैं। इन रंगीन जनजातियों में से आदि अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। आदि जनजाति मूल रूप से एक कृषि प्रधान समाज है जो 3 प्रमुख त्योहार मनाता है, अर्थात सोलुंग, अतरगेदे और उइनारान। इन त्योहारों में आबांग या पुरोहित गीत की भूमिका सबसे अधिक होता है। आज हम आदि समाज के आबांग के बारे में संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे जो इन लोगों की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मान्यताओं के आदित्य पहलुओं को एक ठोस रूप देता है। उमरतातिन आदि समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हमें बताते हैं कि आबांग पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की उत्पत्ति और विकास के पीछे के सभी पौराणिक पहलुओं का वर्णन करता है।
आबांग को हम एक संक्षेप में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक शास्त्र है, हमारा आदि का एक शास्त्र है। इसमें आबांग में सभी से कैसे ये पृथ्वी को बनाया है और जीव जंतु कैसा आया है इस संसार में, ये सभी को आबांग में ही बताता है और उसमें पूजा में ही उसको बताते हैं। फेस्टिवल बिना आबांग से होता नहीं। फेस्टिवल को क्यों मना रहा है, कैसे मना रहा है, कौन सा मना रहा है और किसके लिए मना रहा है, आबांग में ही आपको सब मिल जाता है। और उसको बताने वाला को हम मिरी बोलता है। ये मिरी कैसे हमारा यहाँ इस दुनिया को, इस संसार को क्रिएट किया है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसको मिरी उसको बताता है तो आबांग का माध्यम से।
श्री प्रतिन हमें बताते हैं कि आबांग 3 प्रकार के होते हैं। पहला बिन्यात, दूसरा लिमल लिबोम और तीसरा एकोप्ताकोर आबांग।
बिन्यात आबांग मेनली ये मेनली कल्टिवेशन का है। पेरीक्रॉप का तीने नाने ये लक्ष्मी है, तो तीने नाने का नाम में हम बिन्यात करते हैं। बिन्यात में हम कैसे दौड़ती माँ को कैसे हम पूजा पाठ करना है, उसको कैसे पूजा पाठ करके हमको हमारा बम्पर क्रॉप होना चाहिए, उसके बारे में ही हम बृहत आबंग में बोलते हैं। लिमिट लिवम आबंग, ये लिमिट लिवम आबंग है कैसे इस संसार में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैसे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम शुरू हुआ है, उसमें लिमिट लिवम आबंग में बताता है। एकोप तक्टर आबंग एक टू है, एकोप तक्टर आबंग जब से इंसान को इस दुनिया में सृष्टि हुआ है उसी समय से ये एक सोशल एवोल्यूशन शुरू किया है, और ऐसा करते करते कैसे डेवलप हुआ है उसका बारे में एकोप तक्टर में बोलता है। और ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन दिस वर्ल्ड अगेंस्ट एविल थिंग्स।
उत्तर पूर्वी राज्यों की अधिकांश जनजातियों के पास अपनी स्क्रिप्ट या लिपि नहीं है, और इसलिए उनके पास लिखित साहित्य नहीं है, लेकिन उनका इतिहास लोक कथाओं, अनुष्ठानों और गीतों के रूप में मौखिक साहित्य के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ आदि जनजाति ने अपने इतिहास, अपने संघर्ष और संस्कृति को आबांग के विभिन्न रूपों में संरक्षित कर रखा है। मैं राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
और अब आपको बताते चलें कि असम में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेजपुर विश्वविद्यालय ने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक के लिए प्रवेश शुरू कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ये कार्यक्रम छात्रों को उन्नत ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के बारे में विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग और एमटेक तेजपुर विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में 2 वर्ष का पूर्णकालिक कार्यक्रम है जो बहुत व्यवहारिक है और शैक्षणिक पाठ्यक्रम को इसके साथ जोड़ता है, और साथ ही जोड़ता है अनुभव। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए इसे तैयार किया गया है। तो हाल ही में जागी रोड में स्थापित सेमीकंडक्टर यूनिट का उदाहरण देते हुए तेजपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन इसका प्रतिनिधित्व भी करता है। इस पहल का उद्देश्य देश को सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, और साथ ही डिजाइन, विनिर्माण और नवाचार लगभग हर क्षेत्र के लिए यह आवश्यक भी है। एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, संचार, स्वच्छता और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरणों के महत्व को देखते हुए तेजपुर विश्वविद्यालय इस शैक्षणिक कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। उत्तर का समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। कोई भी जगह अब दूर नहीं। वो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। आप यहाँ पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, और साथ ही यहाँ है अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल, उसे आप स्वयं देखेंगे और महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए, और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। नंबर नोट कीजिए 9289094044।
Oh,
और अब अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए, आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।